ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ इस प्रातकालीन की श्रीमद् भागवतम की क्लास में, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद संख्या 9 में से और अध्याय संख्या है 16। और इस अध्याय का शीर्षक है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश, और हम श्लोक संख्या में पहुँचे हैं 24। तो मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ, तो आप मेरे पीछे दोहराइए। स्वदेहं जमनग्निस्तुलब्ध्वा संज्ञानालक्षणम् ऋषिणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजिता। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानालक्षणम् ऋषिणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजिता। स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानालक्षणम् ऋषिणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इस भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की स्वदेहम अपना शरीर जमदग्नि मुनि जमदग्नि तू लेकिन लब्ध्वा फिर से पाकर संज्ञान लक्षणम जीवन ज्ञान तथा स्मृति के सारे लक्षणों से युक्त ऋषिनाम ऋषियों के मंडले सात नक्षत्रों के समूह में सह वह जमदग्नि अभूत बन गया सप्तमा सातवा राम पूजितः परशुराम द्वारा पूजित होकर। अनुवाद। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति सहित पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वह सात नक्षत्रों के समूह में सातवें ऋषि बन गए। मेरे पीछे अनुवाद रहे। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति सहित पुनः जीवन प्राप्त हो गया और वह सात नक्षत्रों के समूह में सातवें ऋषि बन गए। तत्पर ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सात नक्षत्र सप्त ऋषि मंडल कहलाते हैं। हमारे लोक के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन सातों नक्षत्रों में सात ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम है कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि तथा भरद्वाज। ये सातों नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटे में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इन सात नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड की ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र मैप का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। तो इस श्लोक का अनुवाद है कि जैसे जो लोग पिछले क्लासेस में आ रहे हैं उन्होंने शायद सुना होगा कि परशुराम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ किस हेतु के लिए करते हैं? जमदग्नि को जीवित करने के, क्योंकि कर्तव्य अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया था। तो परशुराम ने कर्तव्य अर्जुनों का वध करके, कर्तव्य अर्जुनों के पुत्रों का वध करके जो है वो एक यज्ञ किया, और यज्ञ के फलीभूत क्या हुआ कि जमदग्नि को पुनः शरीर प्राप्त हो गया। और जैसे यहाँ पर लिखा है संज्ञान लक्षणम, जब जमदग्नि को दोबारा शरीर प्राप्त हुआ तो उनकी स्मृति भी उनको साथ में प्राप्त हुई। जैसे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी याददाश्त जो है वो पिछली याददाश्त, पिछले शरीर की याददाश्त खो जाती है, और उसको जो है एक फ्रेश मेमोरी से वो शुरू करता है। लेकिन जब इस समय जमदग्नि को दोबारा शरीर प्राप्त हुआ तो उनको पुरानी पुनः स्मृति, पुराना ज्ञान पूरा प्राप्त था। और जमदग्नि शरीर प्राप्त करने के बाद पृथ्वी में नहीं रहे जहाँ पर वो पहले रह रहे थे, और क्या उन्होंने किया कि सप्त ऋषि मंडल में चले गए और वहाँ पर एक सप्त ऋषि बन गए जमदग्नि। और प्रभुपाद जी जो है इस पूरे तात्पर्य में जो है सप्त ऋषि, सप्त ऋषि मंडल, ध्रुव तारा, और कैसे सप्त ऋषि में कौन कौन है, और सप्त ऋषि के मंडल के जितने भी ग्रह हैं कैसे ध्रुव तारा का परिक्रमा करते हैं, सबका वर्णन करते हैं। तो जो मुझे श्लोक प्राप्त हुआ तो मैं सोच रहा था कि इस तात्पर्य के अगर उसके ऊपर कुछ बोलना है तो आपको जो है वो जो मंडल की स्थिति है और जो तारों की स्थिति है, ग्रह लोकों की स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में कुछ विश्लेषण कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है सुता पुता दास, तो रिचर्ड एल थॉम्सन नाम है उनका, तो उन्होंने उनके हेल्प से उन्होंने एक बुक लिखी है वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर। तो उनके हेल्प से कुछ मूल मूल चीज़ें जो मुझे मैं समझ पाया वो आप लोगों के सामने रखूँगा। क्योंकि जब वो बुक लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो पाँचवें स्कंद में जिसमें खासकर कॉस्मोलॉजी के ऊपर या फिर किस तरीके से यूनिवर्स में प्लैनेटरी सिस्टम सिचुएटेड है इसका जब वर्णन आता है, तो आखिरी में करीबन 24वें अध्याय के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय में स्वयं ऐसा वर्णन है कि जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति भी है, जो मटेरियल एनर्जी भी है, अगर कोई उसको भी समझने का प्रयास करता है और उसको ब्रह्मा जी का समय प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी को पूरे जीवन का समय भी प्राप्त हो जाता है, जो कि कितना बड़ा है, करोड़ों साल। तो करोड़ों सालों के लिए कोई प्रयास करता है भगवान की बहिरंगा शक्ति को समझने के लिए, भगवान के ब्रह्मांडों के अंदर किस तरीके से लोग स्थित हैं इसको समझने की कोशिश करता है, तब भी उसके लिए संभव समझना असंभव है। ये तो उनकी बात की जा रही है जो कि शब्द प्रमाण शास्त्रों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहा है, और जो वैज्ञानिक प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमान के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो पूर्ण रूप से असंभव है। तो इसलिए जो भी इस स्टडी से जो मुझे मुख्य चीज़ें समझ में आई वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो जैसे इस श्लोक में लिखा है कि जमदग्नि को जब दोबारा शरीर प्राप्त हुआ तो वो सप्त ऋषि बन गए, सप्त ऋषि के मंडल में चले गए और सप्त ऋषि बन गए। तो सप्त ऋषि मंडल कहाँ है, कहाँ गए वो पृथ्वी के बाद, तो थोड़ी इसकी बात चर्चा करेंगे। सप्त ऋषि मंडल है कहाँ पर, कितना लंबा सफर तय किया उन्होंने, कहाँ जाना पड़ा उनको, ये कहाँ पर है हमारे यूनिवर्सल सिस्टम है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सप्त ऋषि कौन होते हैं, क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सप्त ऋषि बनने का क्या उद्देश्य था, और ये सात ऋषि है कौन कौन और कार्य क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और जनरल थोड़ी कॉस्मोलॉजी, ये यूनिवर्स हमारा कैसा बना है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सब यात्रा के लिए? धन्यवाद। तो हम लोगों ने सुना है कि हम इस ब्रह्मांड में जो ग्रह लोग स्थित हैं वो 14 भुवन में स्थित है। कितने लोगों ने सुना 14 भुवन है, 14 भुवन सुना। और हम कहते हैं 14 भुवन जो है वो, उन 14 भुवन को तीन लोग भी कहते हैं, त्रिलोक। ये कितने लोगों ने सुना, तीन लोग सुना। तो ये तीन लोगों का क्या मतलब है और 14 भुवन का मतलब क्या है, थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल्स हैं। तो 14 भुवन में का सरल शब्द क्या है कि 14 भुवन है, या भुवन का मतलब होता है प्लैनेटरी सिस्टम्स। प्लैनेटरी सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, कि एक सिस्टम, एक प्लैनेटरी सिस्टम में अनेकों किस्म के ग्रह, लोग, तारे, नक्षत्र होते हैं। एक प्लैनेटरी सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, बहुत सारे स्टार्स होंगे, बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन होंगे, इसको हम हिंदी में ग्रह, तारे, नक्षत्र कहते हैं, एक प्लैनेटरी सिस्टम। ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में सारे प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये 14 सिस्टम्स क्या क्या हैं, वो भागवतम में उन 14 भुवनों का नाम। तो कोई ऐसे बुद्धिमान भक्त हैं जो कि 14 नाम ले सकते हैं 14 भुवनों के, तो उनके लिए मंगल आरती भोग का प्रसाद की विशेष व्यवस्था की जाएगी उनको दिया जाएगा। कोई बता सकते हैं 14 भुवनों के नाम? माइक
ब्रह्मलोक, कपलोक, महलोक,
सही जा रहे हैं आप,
ब्रह्मलोक, कपलोक, महलोक, स्वर्गलोक।
राहुल जी जल्दी आउट हो गए, हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए। यस केशव भाई बोलो।
ऊपर के बताने पहले नीचे, नीचे से
कैसे भी शुरू करें, अंत जहां करेंगे वहां पर आपको इनाम
मिलेगा। अतल वितल, अतल वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पतल, पृथ्वी ऊपर यहां पे, फिर भोरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक।
हरि ओम, जय हो, हरि ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, हरि ओम। तो क्या कभी तो खाते रहते मंगल आरती का, कोई और होते तो दे सकते थे। मजाक कर रहा हूँ, जोर कर। तो 14 भवन कौन कौन से हैं, नीचे से शुरू करो, ऊपर से शुरू करें? नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाताल, पाताल के नीचे आते हैं नरक लोक। सबसे नीचे जो भुवन है उसको कहते हैं पाताल, और पाताल के नीचे नारके लोक, और 28 किस्म के नारके लोगों का वर्णन है कम से कम। तो पाताल के नीचे नारके लोक, और उसके पाताल लोक, पाताल लोक में बहुत सारे ग्रह हैं, लोक हैं, नक्षत्र हैं। पाताल के ऊपर रसातल, रसातल के ऊपर महातल, महातल के ऊपर तलातल, तलातल के ऊपर सूतल, सूतल के ऊपर वित्तल, और वित्तल के ऊपर अतल। ऐसे 7 पृथ्वी के जो भुवन है उसके नीचे। पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है, लोक नहीं। पृथ्वी आता है भूलोक में, भूलोक प्लैनेटरी सिस्टम का नाम है, और उसमें एक ग्रह है, क्या नाम है उसका? पृथ्वी। ठीक है, तो भूलोक जो प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें एक ग्रह है पृथ्वी, उसके नीचे 7 ऐसे और प्लैनेटरी सिस्टम है भुवन, जिसका मैंने नाम बताया, और बीच में आता है भूलोक जिसमें हमारी पृथ्वी, इसमें एक ग्रह है पृथ्वी, और भूलोक के ऊपर है भुवर, भुवर लोक, और भुवर लोक के ऊपर है स्वर्ग जिसमें सब देवता रहते हैं, और स्वर्ग लोक के ऊपर है महर, महर लोक के ऊपर है जनलोक, जनलोक के ऊपर है तप लोक, और तप लोक के ऊपर है सत्यलोक। इस तरीके से 14 भुवन, और इन 14 भुवनों में अलग अलग लोक रहते हैं। जैसे सत्यलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी, तपलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र, कौन से? 4 कुमार, कुमार रहते हैं। जनलोक और महलोक में प्रजापति रहते हैं, अलग अनेकों किस्म के प्रजापति ब्रह्मा जी ने पैदा किए। जब 4 कुमार ने संतान उत्पत्ति करने के लिए मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, जब गुस्सा आया तो उनकी भ्रकुटी से रुद्र पैदा हो गए। तो कुमार तो संतान पैदा करना नहीं चाहते थे, तो अब जीवों को शरीर कैसे मिलता है, तो उन्होंने रुद्र को बोला कि आप जो हैं वो शरीर पैदा करें। लेकिन क्योंकि गुस्से में रुद्र पैदा हुए थे, तो रुद्र भी जो है वो नीले और लाल रंग के पैदा हुए थे, क्योंकि नीले और लाल जो है वो सतो, वो रजो और तमोगुण के प्रतिनिधित्व है, क्योंकि क्रोध रजोगुण का और तमोगुण का प्रतिनिधित्व है, तो उस गुणों में रुद्र पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी रुद्र को कहा कि आप प्रजा बढ़ाई। जब रुद्र प्रजा बढ़ाने लगे तो कौन पैदा हुए? भूत, पिशाच, सांप, अनेकों किस्म के भयानक जीव पैदा हुए। और वो क्या करने लगे? ब्रह्मांड को नष्ट करने लगे। जय श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो क्या करने लगे कि जो है ब्रह्मांड को नष्ट करने लगे, पैदा होते ही नष्ट करने लगे। ब्रह्मा जी को लगा रही है क्या हो रहा है, मैं तो इसलिए पैदा किया था कि सृष्टि आगे बढ़े, सृष्टि की प्रारंभ की बात बता रहा, और प्रारंभ में ही वो नष्ट करने लगे। तो उन्हें रुद्र को रोक दिया कि आप सृष्टि में आप प्रजा को मत बढ़ाइए, आप तप कीजिए और सत्वगुण में स्थित होइए। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या किया, सप्त ऋषियों को पैदा किया, जो कि सप्त ऋषियों का वर्णन, सप्त ऋषियों के साथ साथ और भी ऋषियों को पैदा किया। और फिर मनु को पैदा किया, शंभु मनु को पैदा किया। और इस तरीके से फिर इन सप्त ऋषियों और मनुओं के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में सारी सृष्टि जो है में सब जीव पैदा हुए। ठीक है, फिर स्वर्ग लोक, देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, जिसने हम सुनते हैं सूरज, चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण, जितने भी हैं ये स्वर्ग लोक प्लैनेटरी सिस्टम में रहते हैं। ठीक है, भूवर में रहते हैं राक्षस और यक्ष, घोसली स्पिरिट्स, ये भूवर लोक में रहते हैं। भूलोक में पृथ्वी और हम सब मनुष्य रहते हैं, और नीचे के जितने लोग हैं उसमें दानव, नाग और दैत्य रहते हैं। इस तरीके से ये 14 भुवन। अब इन 14 भुवनों को 3 लोकों में विभाजित किया गया है, एक है पाताल, एक है मर्त्य, एक है स्वर्ग। अब इन 3 लोकों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से संबोधित किया जाता है, हर जगह एक मतलब नहीं है। जब भी 3 लोक बोला जाता है, त्रिलोक बोला जाता है, हमेशा उसका एक मतलब नहीं। जैसे 14 भुवन बोला जाता है तो एक ही मतलब है, लेकिन त्रिलोक का अलग अलग स्थान पे अलग अलग मतलब है। एक जैसे मतलब है, त्रिलोक का मतलब पाताल लोक, मर्त्य लोक और स्वर्ग लोक। इसका मतलब क्या है कि अकल से लेकर पाताल लोकों को एक विभाजन कर दिया है, उसको बोलता है पाताल लोक। भूर लोक को बोला गया है मर्त्य लोक, जहाँ पर सब दुख और मृत्यु है। और ऊपर के लोगों को भूर लोक के ऊपर भूवर, स्वर्ग, महर, जन, तप और सत्य, इनको बोला गया है स्वर्ग लोक। ऐसे एक विभाजन किया गया। दूसरा विभाजन किया गया है जो कि बृहद भागवत अमृत में आता है, वो है कि जो पाताल लोक है, जो कि 7 मैंने बताया अतल से लेकर पाताल तक, जिसको पाताल लोक भी बोला जाता है, उसको कहते हैं बिल स्वर्ग। वो भी स्वर्ग के लोक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भागवतम के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक के 8वें श्लोक संख्या में बिल स्वर्ग का वर्णन है, और उसमें ऐसा वर्णन है कि इन 7 लोकों में ये सब दानव और दैत्य रहते हैं। क्योंकि दानव और दैत्यों की मुख्य रुचि इंद्र तृप्ति में रहती है, तो इन लोकों को में बहुत ऐश्वर्य है ताकि वो इंद्र तृप्ति में लिप्त हो सके, इसलिए वो भी स्वर्ग लोक है। मतलब वहां पर भी ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। और इस श्लोक में यहां तक लिखा है कि जो ऐश्वर्य बिल स्वर्ग में है, अतल से लेकर पाताल लोकों में है, वो स्वर्ग लोकों से भी ज्यादा है, स्वर्ग लोकों से भी ज्यादा है। और उसमें एक लोक है सुतल, जिसमें कौन रहते हैं? बलि महाराज रहते हैं और वामन देव रहते हैं। तो इन बिल स्वर्ग में जो ऊपर के स्वर्ग लोक हैं उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्य है। तो एक विभाजन दिए गए, तो त्रिलोकों में एक विभाजन है बिल स्वर्ग, ये 7 लोकों को बिल स्वर्ग बोलते हैं। जो भूलोक है, जहां हमारी पृथ्वी है, इसको बोलते हैं भौम स्वर्ग। और भागवतम के 5वें स्कंद के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है कि इस भूर लोक में 9 वर्ष हैं, जिसमें एक है भारतवर्ष जिसमें हम रह रहे हैं। तो भारतवर्ष में ये कर्म भूमि है, लोगों को सुख मिलता है, दुख मिलता है कर्म के अनुसार। लेकिन इस भारतवर्ष के अलावा जो बाकी 8 वर्ष है, वहां पर जब कोई ऊपर लोकों से नीचे आता है तो वो पुण्य को भोगता है, इसलिए इस जगह को भी भौम स्वर्ग कहा गया। आप समझ पा रहे हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं, समझ पा रहे हैं सर? तो मैंने बताया 3 लोगों के क्या विभाजन है, एक तो है पाताल मर्त्य स्वर्ग, एक विभाजन है बिल स्वर्ग, भौम स्वर्ग और दिव्य स्वर्ग। तो जो बिल स्वर्ग है वो अतल से लेके पाताल लोगों को बिल स्वर्ग बोलते हैं, भौम स्वर्ग भूलोक को बोलते हैं, लेकिन भूलोक में हर किसी को भौम स्वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुख भी है, पीड़ा भी है, कष्ट भी है, क्लेश भी है। ये सब जो है वो सिर्फ भारतवर्ष में है। जो बाकी वर्ष हैं उसमें जो है वो भी स्वर्ग लोकों के समान है। जब कोई उन्य लोकों से नीचे गिरता है और उसका पुण्य बच जाता है तो उसको जो है उन वर्षों में जो है सुख प्राप्त होता है, ऐसे भागवतम के इस श्लोक में वर्णन है 5:17-11 में, ठीक है। और जो इस भूलोक के ऊपर है, जैसे मैंने बताया भूवर स्वर्ग महर जन तप, इन सबको बोलते हैं दिव्य स्वर्ग। ये एक विभाजन। इसके अलावा तीसरा विभाजन भी बोलते हैं त्रिलोक को। त्रिलोक को बोलते हैं, जैसे हम गायत्री में करते हैं भू भूवर स्व, है ना, आप हम सब गायत्री में जब करते हैं। तो भू भूवर स्वर का मतलब क्या है? भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक, जो बस 3-14 में से जो 3 लोक हैं उसको भी त्रिलोक बोला जाता है। तो ऐसे त्रिलोक के अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब, ठीक है। अब ये सब मैंने क्यों बताया, ये समझने के लिए कि सप्तऋषि मंडल कहाँ है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम रात में सप्तऋषि मंडल देख सकते हैं। कितने लोगों ने कभी देखा है सप्तऋषि मंडल? कैसे दिखाई देता है सप्तऋषि मंडल? हाँ, कैसे दिखाई देता है? क्वेश्चन जैसे या चम्मच जैसे, है ना, या लैडर जैसे दिखाई देता है। तो सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मतलब 7 ग्रह हैं, जिसको ये 7 ऋषि इनके एक तरीके से प्रिसाइडिंग ड्यूटीज है, जो 7 ऋषियों के नाम है। ये 7 ग्रह कहाँ हैं उसको बताने के लिए मैंने 14 भुवन बताए, ठीक है। अब 14 भुवन में ऊपर से शुरू करें तो सबसे ऊपर कौन सा था? सत्यलोक। सत्यलोक के नीचे क्या था? तपलोक। तपलोक के नीचे क्या था? जनलोक। जनलोक के नीचे क्या था? महरलोक। महरलोक के नीचे क्या था? स्वर्गलोक। तो इस महरलोक और स्वर्गलोक के नीचे है ध्रुव तारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल स्टार, जो भी रात को दिखाई देता है। जिस तरीके हम सप्तऋषि मंडल देख सकते हैं, ध्रुव तारे को भी देख सकते हैं। कितने लोगों ने ध्रुव तारे को देखा? जो सबसे चमकता हुआ तारा आपको दिखाई देगा वो कौन सा है? ध्रुव तारा, उसको बोलते हैं पोल स्टार। ये ध्रुव तारा है, ये महरलोक और स्वर्गलोक के 2 प्लैनेटरी सिस्टम के बीच में एक ग्रह है, समझे? 2 प्लैनेटरी सिस्टम के बीच में एक ग्रह है ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा से 13,00,000 योजन नीचे है सप्तऋषि मंडल, जहां पर ये 7 ऋषि रहते हैं। इसका मतलब जबंद अग्नि जी जो है वो इस भूर लोक से कहां गए? उस सप्तऋषि मंडल गए, मतलब कई लाखों योजन का उन्होंने सफर तय किया, ठीक है। अब ये ध्रुव तारा क्या है? अब इसमें जैसे लिखा है कि सप्तऋषि मंडल जो है वो ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। क्यों परिक्रमा करता है, क्या कारण है? हाँ जी, ठीक है, हम समझेंगे कि सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा क्यों करते हैं। जहां ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा को इस संसार का वैकुंठ बोला जाता है, क्योंकि वहां पर शिरोदक्षा विष्णु रहते हैं। जब हम कृष्ण बुक में पढ़ते हैं कि जैसे जो पृथ्वी है वो गाय बन जाती है, और गाय बन के कहां जाती है? गाय बन के कहां जाती है? ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्म सत्य लोग जाते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सब देवताओं को लोकर कहाँ जाते हैं? श्वेत द्वीप में जाते हैं, जहां पर कौन सा समुंदर है? शीर सागर है। शीर सागर मतलब किसका समुंदर है? किसका सागर है? दूध का सागर। तो जो शीर सागर है और जो श्वेत द्वीप है जहां शिरोदक्षा विष्णु विराजमान है, ये ध्रुव लोक में भागवत में ऐसा लिखा। इसका मतलब शिरोदक्षा विष्णु जी कहां रह रहे हैं? ध्रुव लोक में। ध्रुव लोक, ये जो ध्रुव लोक है पहले वैकुंठ है, पहले वैकुंठ है। जब ध्रुव जी ने तपस्या की तो भगवान ने ध्रुव को कहा कि आपको जिस स्थान पे मैं रह रहा हूँ वो वैकुंठ प्राप्त होगा इस भौतिक संसार में। तो फिर उसके बाद जो है वो ध्रुव लोक नाम पड़ गया, ध्रुव तारा नाम पड़ गया। लेकिन ध्रुव तारा जो है वो वैकुंठ है इस ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है, जहाँ स्वयं विष्णु रहते हैं, वो है ध्रुव तारा के अंदर। ध्रुव तारा के अंदर एक क्षीर सागर है, एक श्वेत द्वीप है जिसमें क्षीर सागर है, और उसमें जो है वो शिरोदर्शा विष्णु रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जब भी कोई परेशानी होती है तो सब देवता जो है इस ध्रुव तारे में जाते हैं मिलकर, और इस ध्रुव तारे में क्षीर सागर में जाते हैं जहाँ पर शिरोदर्शा विष्णु है, लेकिन उनको दर्शन नहीं होते। तो ब्रह्मा जी वहाँ तप करते हैं और फिर उनको हृदय में शिरोदर्शा विष्णु जी उनको संदेश देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, एक ये चीज़ है। अब इसके बाद ये सब ऋषि मंडल इसकी परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि स्वयं भवन विराजमान है, वैकुंठ है, तो इसलिए ये सब ऋषि मंडल जितने भी ग्रह हैं ये ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं, और इस ध्रुव तारा के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं वो सब इस ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान का विराज, ये स्वयं भगवान का धाम है ये वैकुंठ, और इसमें ध्रुव जी भी रहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए सब ये ग्रह आदर देने के लिए परिक्रमा करते हैं। जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ये सब ग्रह ध्रुव तारा की परिक्रमा करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात हम सीखेंगे कि क्योंकि ध्रुव लोक या ध्रुव तारा जो है वैकुंठ है, इसलिए जब प्रलय आती है तो ये लोक नष्ट नहीं होता। एक प्रलय आती है जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है, तब पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती है, सृष्टि जो है पूरा ब्रह्मांड गर्भोदक्षा विष्णु के साथ जो है वो कारणोदक विष्णु के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी के हर दिन के अंत में ब्रह्मा जी के जो 24 घंटे हैं उसका दो विभाजन है। कहीं आपको कुछ चीज मिस हो जाए तो आप रोक दीजिएगा मुझे। जैसे हमारा दिन है, इसके दो विभाजन है, क्या विभाजन है, दो दिन और रात, दिन 12 घंटे के और रात भी 12 घंटे, ऐसे ब्रह्मा जी का भी दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे। तो 12 घंटे जो दिन के 12 घंटे हैं उसमें जो है वो सृष्टि होती है, और जो रात के 12 घंटे उसमें प्रलय होती है, प्रलय होकर सब सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जो रात के 12 घंटे में जब प्रलय होती है तो उसमें जितने भी लोग मैंने बताए 14 गुणों में से, इसमें सारे लोग नष्ट नहीं होते, ध्रुव लोक तक सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, ध्रुव लोक के ऊपर प्रलय नहीं आता जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। तो जब प्रलय की बारिश होती है, प्रलय का पानी बढ़ता है, हम सबने पढ़ा होगा, तो ये सब जाता है ध्रुव लोकों तक, उसके ऊपर नहीं जाता। ध्रुव लोक महालोक के ऊपर जो है प्रलय का कोई असर नहीं होता जब ब्रह्मा जी के दिन के बाद प्रलय होती है। ब्रह्मा जी के जीवन के बाद प्रलय में सब प्रलय हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के दिन के प्रलय में ये प्रलय नहीं होता। तो ध्रुव लोक तक, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ बैठे हैं, ध्रुव जी बैठे हैं, तो उसके बाद प्रलय, उसके बाद प्रलय की शक्ति नहीं होती कि उसके ऊपर जा सके, तो वहाँ तक रुक जाता है प्रलय। तो एक ये चीज हम सीखते हैं भागवतम से। दूसरा हमें सीखते हैं कि ये लोग जो हैं वो आसमान में स्थित कैसे हैं। अभी तक तो हमने हमारी मां, हम जो एक पिक्चर बनाते हैं, कैसे पिक्चर बनाते हैं कि नीचे है पाताल, पाताल से ऊपर है रसातल, रसातल से ऊपर है महातल, तलातल, ये सब जो नाम है, हमें सोचते हैं कि ये ऐसे सीक्वेंशली नीचे से ऊपर स्थित हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इतना सिंपल नहीं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यूनिवर्स। कॉम्प्लिकेशन कैसा है कि हालांकि प्लैनेटरी सिस्टम्स एक मुख्य, उसके जो अगर सेंटर हम लें इन सब प्लैनेटरी सिस्टम्स के, तो हो सकता है एक के नीचे एक हो, लेकिन इनके अंदर जो ग्रह हैं वो इंटरमिक्स्ड है। जैसे उदाहरणार्थ पृथ्वी कौन से लोक में है, भूलोक, गुड, इसका मतलब आप जाग रहे हैं। मुझे लग रहा था कि प्रभु जी उठ के गए, मुझे लगा कि आप सब सोएंगे। धन्यवाद। तो पृथ्वी है भूलोक में, जो चंद्रमा है, जो मून हम देखते हैं, वो स्वर्ग लोकों में आता है। कौन से प्लैनेटरी सिस्टम में आता है, स्वर्ग लोक में आता है। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो आसपास है, वो एक लेयर में आता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा रूपानुगा दास अपने एक शिष्य को 20 दिसंबर 1968 में, तो उन्होंने पूछा था कि ये लोग कैसे स्थित हैं ब्रह्मांड में। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, जिस तरीके की कमल की पंखड़ियाँ होती हैं, अगर कमल देखें कहीं पंखड़ियाँ कमल को बनाती हैं, तो प्रभुपाद जी कहने लगे सब पंखड़ियों में अलग अलग ग्रह हैं और हर पंखड़ी में जो अलग अलग ग्रह हैं वो अलग अलग कैटेगरी के, मतलब हर पंखड़ी में पाताल लोक के ग्रह भी हैं, मर्त्य लोक के ग्रह भी हैं और स्वर्ग लोक के ग्रह भी मिक्स है। तो एक पंखड़ी में जो है पाताल लोक के ग्रह भी हैं, मर्त्य लोक के ग्रह भी हैं और स्वर्ग लोक के ग्रह भी हैं। इस तरीके से सारे पेटल्स में जो अगर ब्रह्मांड एक कमल के समान है, उसमें जितने भी दल हैं उस कमल के, अगर उन सबको आप मिला लो तो ये सब प्लैनेटरी सिस्टम बनाएंगे, लेकिन जो ग्रह है वो ऊपर नीचे। तो अगर एक लेयर लें, सो कॉल जो भी हम एक लेयर लें, उसमें ये तीनों प्लैनेट्स का मिक्सचर। तो जिस तरीके से पृथ्वी भूर लोक में है और जो मून है, जो सूरज है, ये स्वर्ग लोकों में आता है, लेकिन ये ग्रह स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग लोक का जो सेंटर पॉइंट है ऊपर है, लेकिन ये लोग पृथ्वी के एक ही लेयर में आते हैं इसलिए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी स्वर्ग लोग दिखाई नहीं देते। जैसे इंद्र का लोग दिखाई नहीं देता, जहाँ इंद्र रहते हैं वो स्वर्ग लोकों में है, लेकिन वो लोग दिखाई नहीं देता क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य ये स्वर्ग लोकों में ही है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा देवता हैं, लेकिन ये दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के आसपास है। तो इस तरीके से ब्रह्मांड का कुछ कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम भागवतम में सीखते हैं कि जब प्रलय होती है तो स्वर्ग लोक की तो प्रलय होती है, लेकिन इसमें दो लोक की प्रलय नहीं होती, ध्रुव लोक के ऊपर भी प्रलय नहीं होती और इस स्वर्ग लोकों में दो ग्रहों की भी प्रलय नहीं होती। किसकी नहीं होती होगी? बहुत सिंपल है, सूरज और चंद्रमा की। इसका मतलब क्या है कि प्रलय होने के बाद भी सूरज की रोशनी महर जन तप और सत्य लोक तक जाती, नीचे लोकों में नहीं जाती, वहां अंधकार हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर लोकों में सूर्य की रोशनी जाती है। तो सूर्य और चंद्र को भगवान जो है प्रलय नहीं होने देते ब्रह्मा जी के अंत में, ये भी हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस ग्रह लोकों की रचना इस ब्रह्मांड में कुछ मुख्य मुख्य हमने बातें सीखी। अब हमने ये देखा कि इस तरीके से कुछ एक संक्षिप्त में देखा कि कैसे लोग स्थित हैं ब्रह्मांड में, और हमने ये चर्चा क्यों की थी, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि सब ऋषि मंडल कहाँ है, तो हमने ये चर्चा करने के लिए इसको उद्देश्य था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब ऋषि मंडल कहाँ है तो क्या बोलेंगे आप, क्या समझे हम? हाँ, स्वर्ग लोक और महर्लोक के बीच में, ध्रुव लोक के नीचे। स्वर्ग और महर के नीचे बहुत ग्रह हैं, लेकिन एक ध्रुव ग्रह है, ध्रुव तारा है, और उसके नीचे जो है वो ये सब ऋषियों का मंडल है, सात ग्रह हैं जिसमें ये सात ऋषि रहते हैं। और ये सात ऋषि का नाम क्या क्या है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अक्सर पूछना आता है कि सब ऋषि का नाम बताइए, है ना। तो उसमें जैसे नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमद अग्नि, भरद्वाज, ये सात ऋषियों के नाम। लेकिन हमेशा सात ऋषि यही नहीं रहते, ये एक और चीज़ हम सीखेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ब्रह्मा जी का दिन और रात बता रहा था, तो मैंने रात का वर्णन किया प्रलय के बारे में बताया, अब मैं दिन के बारे में बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी के जो दिन है जिसमें 12 घंटे हैं, उसमें सृष्टि होती है, सृष्टि चलती है, वो दिन का कैसे विभाजन है कि उस एक दिन में 14 मनु आते हैं, 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, हर एक दिन में अलग अलग मनु होते हैं। जो ये दिन चल रहा है इसमें 14 मनु का नाम दिया गया है। ये जो दिन है ये ब्रह्मा जी के जब 50 साल बीत गए, जो ब्रह्मा जी का 50th बर्थडे जब आया, उस बर्थडे के बाद जो अगला दिन शुरू हुआ वो ये दिन है जिसमें हम रह रहे हैं। उसे दिन में 14 मनु, उस 14 मनु में 7 मनु बीत गए, 6 मनु बीत गए, 7वें मनु में अभी हम हैं। ब्रह्मा जी को ऑलमोस्ट उस दिन का आधा दिन हुआ अभी, मतलब मध्याह्न का समय ब्रह्मा जी का, 50th बर्थडे के बाद जो फर्स्ट डे था ब्रह्मा जी का, उसका मध्याह्न का समय भी चल रहा है। 6 मनु चले गए, 7वें मनु में हम। 7वें मनु का क्या नाम है? वैवस्वत मनु। अब ये मनु के, जब ये मनु बदलते हैं, जैसे 14 मनु हैं, तो अब मनु का समय बहुत लंबा है, हम देखते हैं, हमने कलयुग सुना है कि कलयुग कितना बड़ा है, 4,32,000, द्वापर इसके 2 गुना, त्रेता इसके 3 गुना और सत्युग इसके 4 गुना। तो चतुर्युग है वो कलयुग के 10 गुना है, तो कितने साल हो गए, 43,20,000 years। समझे, अगर कलयुग 4,32,000 साल का है तो चतुर्युग कितने साल का हो गया, 10 गुना जोड़िए कितना बना, 43,20,000 साल। जब ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनु का जीवन खत्म होता है। तो भगवान क्या करते हैं, इस अंतराल के बाद पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बदल देते हैं। जिस तरीके से हमारी सरकार कितनी लंबी चलती है, 5 साल चलती है ना, जिसमें एक प्रधानमंत्री हैं और बाकी सब वित्त मंत्री, राष्ट्र मंत्री, ये सब 5 साल चलते हैं, है ना। भगवान के मैनेजमेंट में जो है वो मनु के जीवन में कुछ मैनेजमेंट साइकिल बदल जाती है, मैनेजमेंट पोस्ट बदल जाती है, मनु बदल जाते हैं, मनु के साथ सूर्य बदल जाते हैं, मतलब जो सूर्य को देख रहे हैं वो बदल जाते हैं, जो चंद्रमा को देख रहे हैं वो बदल जाते हैं, जो इंद्र को देख रहे हैं वो बदल जाते हैं, और जो सप्त ऋषि है ये बदल जाते हैं। तो इसका मतलब हर मनु के सप्त ऋषि अलग हैं। तो इस 7वें मंत्र के जो सप्त ऋषि हैं वो ये नाम जो अपने दिए हुए, जो हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हम ये चीज समझते हैं। अब ये सब ऋषि करते क्या है, तो ये सब ऋषि प्रजापति, जैसे मैंने आपको पहले बताया था गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं कैसी सृष्टि मैंने पैदा की। भगवान कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को पैदा किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पैदा करने के लिए क्या किया, 4 कुमारों को पैदा किया, उन्होंने मना कर दिया, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, गुस्से से कौन पैदा हुए, रुद्र पैदा हुए। वो मान तो गए जो सृष्टि पैदा की वो खरपतवार, मतलब भूत पिशाच कैसे लोग पैदा हुए, उनको उन्होंने रोक दिया। उसके बाद ये सब ऋषि और कुछ ऋषियों को पैदा किया और उनसे सृष्टि आगे बढ़ी, वो सब ऋषि पैदा किया और 14 मनु किया। जिसका मतलब सब ऋषि का एक काम है वो प्रजापति सृष्टि बना दे। दूसरा काम क्या है, भागवतम में लिखा है, ये सब ऋषि क्या करते हैं, ये विश्व के कल्याण के लिए हमेशा योजना बनाते रहते। तो भागवतम में ऐसा लिखा है कि दीज सप्त ऋषिज एवरी डे कीप थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। वो हर रोज सोचते रहते हैं किस तरीके से इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनका कल्याण किया जाए। ये सब ऋषियों के मुख्य कार्य है, क्योंकि सातों ऋषि जो है वो ऊंची कोटि के ब्राह्मण हैं, ये देवलोकों के ब्राह्मण, क्योंकि देवलोकों में आते हैं तो उसके ब्राह्मण ये सब ऋषि हैं। तो इस तरीके से ये सब ऋषियों का काम। अब ये सब ऋषि कौन कौन है इसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला नाम लिखा है कश्यप, अभी कश्यप कौन है, तो जो कश्यप हैं ये ब्रह्मा जी के पोत्र हैं, पोते हैं, ब्रह्मा जी के एक बेटे थे मरीची के पोते हैं कश्यप। अब कश्यप एक प्रजापति हैं, तो कश्यप ने कई संतानों को पैदा किया, और जैसे एक प्रजापति है कश्यप, ऐसे ही एक प्रजापति है दक्ष। तो दक्ष के ने, जैसे आपने भागवत में पढ़ा है, दक्ष के एक बार 10,000 बेटे हुए, तो किन्होंने उनको सन्यासी बना दिया, सब जाग रहे हैं, धन्यवाद। फिर दक्ष ने दोबारा 1,000 पुत्रों को पैदा किया, फिर किन्होंने उनको सन्यासी बना दिया, फिर दक्ष ने कहा कि मैं बेटों को पैदा नहीं करूंगा, मैं पुत्रों को पैदा करूंगा, बेटों को पैदा करूंगा, क्यों, बेटियों के पास कौन नहीं आएंगे, तो उन्हें 60 बेटियों को पैदा किया। अब इन बेटियों को उन्होंने अलग अलग ऋषियों से उनका विवाह कराया, तो इन 60 बेटियों में से 17 बेटियों का विवाह कश्यप जी ने किया। तो इस तरीके से सृष्टि आगे बढ़ी। तभी आप देखेंगे कई लोगों के गोत्र कौन होते हैं, कश्यप गोत्र होते हैं, सो वहां से सब चल रहा है। उसी तरीके से बताया जाता है कश्यप जो है वो गरुड़ जी के भी पिता है, कश्यप जी जो है वो गरुड़ जी के भी पिता है, और एट द सेम टाइम जो नाग हैं सृष्टि में उनके भी पिता जो है वो कश्यप है। तो ये भाई ही लगते हैं, गरुड़ जी और जितने भी नाग हैं, क्योंकि गरुड़ जी नाग खाते भी हैं। तो इस तरीके से ये कुछ है। ये थोड़ा सा वर्णन हो गया कश्यप जी के बारे में। अब अगले जो सप्त ऋषि वो है अत्रि। ये अत्रि कौन है, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र, कश्यप पोते हैं अत्रि जी जो हैं वो पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। जैसे ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को मन से पैदा किया था तो मानस पुत्र, वैसे अत्रि जी को भी मन से पैदा किया। ब्रह्मा जी ने किसी शादी नहीं की थी इन बच्चों को पैदा करने की, मन से पैदा किया, तो इसको मानस पुत्र बोलते हैं। तो अत्रि जी जो है वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि अत्रि और अनुसुईया की कथा आपने सुनी होगी। अभी जैसे हम लोग कहाँ गए थे, चित्रकूट। तो चित्रकूट में हम गए थे अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के आश्रम। तो हम जब जानते हैं अत्रि और अनुसुईया की कथा, हम जानते हैं कैसे अनुसुईया जी की सतीव्रता के धर्म को तोड़ने के लिए कौन आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, लेकिन तोड़ नहीं पाए थे। तो उन्होंने जो है वो अनुसुईया माता को वरदान भी दिया था, और वरदान में अनुसुईया माता ने प्रार्थना की कि मुझे आपसे ये प्रार्थना चाहिए कि आप तीनों बनके मेरे पुत्र बन जाइए। कौन तीनों बनके पुत्र बन जाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीनों बनके कौन बन गए, दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय जो भगवान है वो अत्रि ऋषि के पुत्र, इस तरीके से अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के पुत्र बने भगवान दत्तात्रेय, जिनका भागवतम में वर्णन आता है। और जो है वो उन्होंने जो है वो फिलॉसफी का कई प्रचार किया। तो ऐसे अत्र और अनुसुई के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ अत्र ऋषि के बारे में हो गए। अब हो गए वशिष्ठ जी। अभी वशिष्ठ जी कौन है, इसमें हम वशिष्ठ जी का नाम रामायण में भी पढ़ते हैं और महाभारत में भी पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वशिष्ठ जी भी आए थे रोकने के। तो रामायण से, भगवान श्री राम के समय से हम उनका नाम सुनते हैं, और जो है वो हम महाभारत में उनका नाम पढ़ते हैं। और वशिष्ठ जी से संबंधित जो विशेष जो लीला आती है वो विश्वमित्र मुनि से जो है उनके संबंध में आती है। अभी हम आगे भागवतम के इसी प्रसंग के बाद विश्वमित्र के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे वशिष्ठ जो है उनके बीच में उनका एक छोटा संग्राम होता है, वो उनकी गाय चुराने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से विश्वमित्र उनको हरा नहीं पाते। तो उनके मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूं, क्योंकि वो जितनी भी सेना भेजते थे तो वशिष्ठ उनका नष्ट कर दिया करते थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की ताकत थी। तो विश्वमित्र को लगा कि शत्रु होने का क्या फ़ायदा अगर मैं वशिष्ठ को हरा नहीं सकता, तो मुझे भी वो ब्रह्म दंड चाहिए जो वशिष्ठ के पास है। वशिष्ठ जी के पास ब्रह्म दंड था, जिनकी शक्ति इतनी होती थी कि वो सभी शत्रुओं को हरा देते थे सिर्फ ब्रह्म दंड के कारण। तो विश्वमित्र इस तरीके से क्षत्रिय धर्म को ढूंढने के बाद काफ़ी तपस्या की ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, और आगे जाके ब्रह्म ऋषि बनते हैं। तो इस तरीके से वशिष्ठ और विश्वमित्र मुनि के बारे में संक्षिप्त वर्णन है जितना हमारे पास समय है। और उसके बाद आता है गौतम ऋषि। अभी गौतम ऋषि कौन है, ये गौतम जो ऋषि जो है वो हम इनका नाम पढ़ते हैं रामायण में, कहाँ पर, कौन सी लीला में, हाँ अहिल्या माता के प्रसंग। कैसे गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, तो एक दिन अहिल्या जब इंद्र जो है वो क्या करता है, अहिल्या माता से आकर्षित होते हैं, तो गौतम ऋषि का वेश धारण करके माता अहिल्या के पास आते हैं संभोग करने के लिए। तो संभोग करते हैं, माता अहिल्या को पता चल जाता है, लेकिन जो है वो विरोध पैदा नहीं करते। इंद्र जब गौतम ऋषि आने वाले होते हैं उसी समय जो है गौतम ऋषि आ जाते हैं, और देखते हैं इंद्र और अहिल्या माता को इस तरीके से व्यभिचार करते हुए। तो वो माता अहिल्या को श्राप देते हैं कि जो है वो एक शिला बन जाए। माता अहिल्या जो है वो उनसे क्षमा याचना करती हैं, तो कहते हैं चिंता मत करो, जब भगवान श्री राम मेरे आश्रम में आएंगे, जब वो कहाँ जा रहे होंगे भगवान श्री राम, जनकपुर जा रहे हो, जब जनकपुर जा रहे होंगे विवाह करने के लिए, रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आएगा, तो भगवान श्री राम अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श करेंगे, और फिर जो है तुम वापस शिला से स्त्री का रूप धारण कर लोगे। और ऐसा ही होता है, वो माता अहिल्या फिर जो है वो स्त्री का रूप धारण कर लेती है। तो ये गौतम ऋषि के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। इसके अलावा हम गौतम ऋषि के बारे में पढ़ते हैं जब छह दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कौन से भक्त हैं जो कि छह दर्शन के नाम बता सकते हैं, और उनके जो छह दर्शन के पीछे जो छह मुनि हैं उनका नाम बता सकते हैं, जो छह दर्शन हैं और जो उनके छह प्रोपाउंडर हैं उस फिलॉसफी के, उनके नाम बता कौन बता सकता है, उसमें से एक गौतम जी हैं। यस, इसके सरपति को माइक माइक
हरे कृष्ण। न्याय जिसको गौतम ऋषि ने प्रवर्तन दिया था, न्याय सिद्धांत को गौतम ऋषि ने सिद्धांत दिया था, वैशेषिक योग और मीमांसा, वेदांत और सांख्य।
जय हो हरि वा। आप मुझे नाम भी बता दीजिए।
सांख्य पे हैं कपिल, योग के हैं पतंजलि और वैशेषिक के हैं नाम कनार। और मीमांसा के हैं जैमिनी और वेदांत के हैं अष्टावक्र और व्यासदेव दोनों को माना जाता है। तो
न्याय के हो गए गौतम। तो छह दर्शन में से गौतम मुनि ने ये दर्शन रखा था, न्याय का दर्शन रखा था। और इसमें वो आते हैं, क्लास के बाद बता दें मुझे बस एक मुनि और पूरे करने हैं फटाफट, दो रह गए। तो गौतम मुनि हो गए। अब जमन अग्नि के बारे में तुम्हें पढ़ा ही है, उनका वर्णन नहीं करेंगे। और आखिर में है भरद्वाज। और भरद्वाज क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 10वें अध्याय के 84th वर्स में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो रूप और सनातन गोस्वामी हैं वो भी भरद्वाज गोत्र से आते हैं, भरद्वाज गोत्र से आते हैं। इसलिए हमारे भरद्वाज मुनि महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी बिलोंग टू द भरद्वाज गोत्र, विच इंडिकेट्स दैट दे बिलोंग ईदर टू द फैमिली और डिसाइपल सक्सेशन ऑफ भरद्वाज मुनि। ये होगा। इसके अलावा प्रभुपाद जी और एक चीज बताते हैं, वो कहते हैं, एज मेंबर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सारस्वती गोस्वामी, सारस्वत गोस्वामी फैमिली, एंड दस वी आर नोन एज सारस्वतास। Obeisances are therefore offered to the spiritual master as Saraswat Deva. तभी हम प्रभुपाद जी के मंत्र में क्या देखते हैं, नमस्ते सरस्वत देवा। और मेंबर ऑफ द सारस्वत फैमिली, तो हमारा कौन सा गोत्र है, सारस्वत गोत्र, सारस्वत फैमिली, whose mission is to broadcast the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu and fight the impersonal and voidist. This was the occupational duty of Sanatan and Rupa Goswami. तो जो रूप और सनातन गोस्वामी हैं वो भरद्वाज, जो कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इसलिए भरद्वाज मुनि का हमारे लिए नाम महत्वपूर्ण है। और जो भरद्वाज मुनि हैं ये द्रोणाचार्य के पिता हैं, और इसका भी एक लीला आती है कैसे द्रोणाचार्य को पैदा करते हैं, मैं नहीं आगे बताऊंगा, समय हो गया है। और फाइनली भरद्वाज जी का जो भी जन्म होता है वो बृहस्पति के द्वारा होता है, और उनके पिता बृहस्पति हैं। तो क्योंकि समय हो गया, तो इस तरीके से कुछ सब संक्षिप्त रूप में इस तात्पर्य अनुसार जो मुझे समझ में आया, जैसे सब ऋषि थे, ध्रुव तारा था और 14 भुवन थे, 3 लोग थे, इसके बाद में संक्षिप्त कुछ परिचय मैं आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अंत करता हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, सांवेद भक्तजन की, निथाय गौर थे मनंदे।
मैं जस्ट एक चीज बताना चाह रहा था कि
प्रभु जी कुछ बता रहे हैं,
जो आप बता रहे थे कि स्वर्ग में जैसे स्वर्ग के देवता है और इंद्र का लोक दिखाई नहीं देता और चंद्रमा और सूरज का लोक, एक्चुअली में स्वर्ग के जो ये एक्सटेंशन कई जगह पर है, स्वर्ग ये नीचे पानी के अंदर भी है, जो वरुण लोक है वो पानी के नीचे है, बट स्वर्ग में कंसिडर किया जाता है। जो यमराज जी हैं वो नीचे संयमनी में रहते हैं, नीचे के लोकों में, बट वो स्वर्ग का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग केवल एक ही जगह पर,
ये तो मैं बता रहा था कि
बिल्कुल अलग अलग जगह पर
ऐसा नहीं कर सकते, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि एक ही ऊपर एक है, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रह स्वर्ग लोक के भी होंगे लेकिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी स्वर्ग लोक के होंगे। तो ये धन्यवाद के लिए, अगर कोई ग्रह हो सकता पता नहीं है या नहीं, बट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कर सकते कि जो है वो एक ही जगह स्थित आसमान में, ऊपर नीचे हो सकता है।
के बाद बस जाएगी स्वर्ग लोग जिसकी
राष्ट्र भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
जय श्री कृष्ण। तुम लोगों की